कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं इस श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आत्माराम।
कहानी का शीर्षक है आत्माराम। वेदोग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वो नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय ना था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में सामे वाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वो भूखा ही उठाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वो अपने काम में निपुण था, फिर भी उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गंभीर से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही ये कलह शांत होता वो अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। लड़के वालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। मन विरक्त हो गया था सबसे। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट ना होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने गांव गांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी त्रुटिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुटकी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। तोता फुटकी से उतर कर नीचे की एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर शशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजड़े को छोड़कर अपने आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया। फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस ताल पर जाता, कभी उस ताल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। गुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का ये संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निविड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना पिंजड़े ही में आ सकता है, फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम ना लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात के भोजन का समय भी निकल गया, पानी की बूंद भी उसके कंठ में ना गई, लेकिन उसे ना भूख थी ना प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वो दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान ना होता था। तोता ही वो वस्तु थी जो उसे चेतना की याद दिलाती थी। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, आधी रात गुजर गई। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका, देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाखू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वो जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठ रहा। साहसे चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के सामने उसकी कल्पना में अब एक दूसरा जगत था। यद्यपि अभी कोश के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। कल्पना में ही एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वो नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा कैसे। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जागी, चिड़िया गाने लगी, सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। ये बोल सदैव महादेव की जिनाहा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श ना करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। ये निर्मल वायु उसे गुंजरित ना कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रभाव से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्मा राम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भाव से उसकी आत्मा विनयल हो गई। वो अनुरक्त होकर कह उठा, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नांद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वो सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की, पंडित जी ने मुंह फेर लिया, यह मंगल मूर्ति कहां से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मयसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा ही सुन लूं। प्रभात ही से तैयारियां होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था, जो सुनता आश्चर्य करता कि आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई, मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने को खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर वो यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से एक महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने विश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिटोली की और कहा, और जो लोग सुरधाम चले गए उनका क्या। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घरवाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा ना थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहां से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात ये थी कि महादेव की साधुता ने उन्हीं को वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव ने कहा, हाँ हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित ने कहा, 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरे निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीकाएं होने लगी, यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित, पंडित ऐसी खराब, राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए, मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद ना आती, अब वो कोई काम न करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता, दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि 1 महीना पूरा हो गया और 1 आदमी भी हिसाब लेने ना आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है, वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ 1 पद का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं, उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे 1 विशाल समाधि है, यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वो रत्न जटित बिजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वो सत्य गुरु दत्त कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया, पर यथार्थ ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं, उनमें सबसे मान ये है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर ना आया, उसका नाम आत्मा राम प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।